प्यारे बाप दादा हमें मिले हैं, अनेक जन्मों की द्वापर और कलियुग के 63 जन्मों की भक्ति के फल स्वरूप हमें भगवान मिले हैं और इस भक्ति का फल बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया है, हमें दिव्य बुद्धि दी है और इस दिव्य बुद्धि के फल स्वरूप हमें सद्विवेक मिला है जो सद्विवेक हमें सत्य असत्य परखने की शक्ति दी है। आज दुनिया में इन्फॉर्मेशन का घोड़ा पूर आया है, परंतु उनको परखने की सत्य परखने की शक्ति नहीं है, इसलिए लोग मुंझते रहते हैं। लेकिन हमारे पास वो सद्विवेक है, परखने की शक्ति है, जिससे हम परख सकते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जीवन में जरूरी है, आवश्यक है और कौन सी परख शक्ति को हम रॉन्ग साइड ले जाने वाली है। आज हम मुंझते नहीं हैं, परखते हैं और जब राइट रॉन्ग को परख लेते हैं तो जल्दी से निर्णय भी कर लेते हैं और जब निर्णय हो जाता है तो निवारण भी हो जाता है। तो ये सत्य ज्ञान बाबा ने जो हम बच्चों को दिया और बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया उस पर ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव से उस पर मनन किया, चिंतन किया, मंथन किया और बहुत सुंदर रीति से हमारे आगे पेश किया है। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी, जिस विशेषता से ज्ञान को हमारे आगे रखा। जब इस सत्य ज्ञान का मक्खन हमें मिला उसी ज्ञान से हमारे अंदर बेहद का वैराग्य प्राप्त हुआ। पिछले 2-3 मास में बहुत मुरलियां सुनी है, रिवाइज हुई है कि वैराग्य और उपराम स्थिति बहुत जरूरी है। जब आंतरिक वैराग्य उत्पन्न होता है तो हम सहज ही जो असत्य है, अपवित्र है, जो अनावश्यक है, उन बातों का हमें वैराग्य आता है, और जो सत्य है, पवित्र है और जो जरूरी है, उस ज्ञान के प्रति हमें राग, आसक्ति और वो ज्ञान जीवन में जरूरी है वो हम महसूस करने लगते हैं। उस सत्य ज्ञान के प्रति जितना हमें निश्चय होता है, निश्चय से ही हमारा पुरुषार्थ सफल होता है। बाबा ने 4 बातों में निश्चय बताया है। अपने आप में निश्चय, मैं वो ही कल्प पहले वाले ईश्वरीय परिवार की आत्मा हूं, मैं वो ही देवता घराने की विजयी आत्मा हूं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि जो निश्चय बुद्धि है वो ही प्रीत बुद्धि बन सकते हैं, और संशय बुद्धि विपरीत बुद्धि हो सकते हैं। बाबा ने जो भी ज्ञान सुनाया, ज्ञान के हर पॉइंट में हमें सुनते ही निश्चय हो गए, हमें सहज लगा। जो सहज लगता है वो जीवन में धारण भी हो जाता है। हमें कोई ज्ञान की पॉइंट में संशय नहीं आया, प्रश्न नहीं उठा। जिसको ये अनुभव है कि हमें सुनते ही निश्चय बैठ गया और धारण करना सहज लगा, वो हाथ ऊपर करे, बहुत अच्छा। ये देवता घराने की आत्माओं की निशानी है। हमने 7 दिन का ही कोर्स किया और सार रूप में जो ईश्वरीय ज्ञान सुना उसमें निश्चय हो गया, धारण करना सहज लग गया। हमें मुश्किल नहीं लगा। निश्चय से ही पुरुषार्थ सहज हो जाता है। हम लोगों ने तो कोर्स भी नहीं किया, परंतु जैसे ही घर से माता पिता से कुछ कुछ जानने को मिला, हम घर में ही मुरली पढ़ने लगे और हमें निश्चय हो गया कि यही ज्ञान सत्य है। हमने निर्णय कर लिया, मैंने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में साउथ गुजरात में प्रथम स्थान प्राप्त किया, परंतु हमने निर्णय कर लिया कि अब मुझे आगे पढ़ना नहीं है, अब इसी ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसी ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमें लग जाना है। हमें तो कोई समझाने वाला भी नहीं था, परंतु खुद ने ही निर्णय कर लिया कि यही सत्य है, लोगों को इसकी ही आवश्यकता है और उसी की सेवा में हम लग गए। हमें कॉलेज का जीवन अच्छा नहीं लगा, लोग मजाक मस्करी तूफान मस्ती करते रहते हैं, स्कूल में जितना सिंसियर स्टूडेंट लाइफ होती है उतना सिंसियर स्टूडेंट लाइफ कॉलेज में नहीं होता है। हमें हमारे प्रिंसिपल ने हमारे मुख्य विषयों के सीनियर टीचर्स सब बहुत समझाने आए, परंतु हमारा निश्चय पक्का था, हमने उसको बता दिया। तो निश्चय माना निश्चय, 100% निश्चय, किसी के भरमाने से, किसी के कुछ उल्टा सुल्टा कहने से हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं हो जाती, हमें दृढ़ निश्चय हो गया। उस पढ़ाई का कोई आकर्षण नहीं रहा। उस समय हम सूरत में थे और सूरत की दीदी ने हर प्रकार की हमसे सेवा कराई। हमारे भाई भी आते थे, दिनचर्या में हम उस समय दोपहर में सोते नहीं थे, अगर दोपहर में कोई आते थे तो हम उनको समझाते थे। भाई एक बार देखने आया और उसने जाकर घर में बहुत धमाल मचाई कि सब सो जाते हैं और ये अपनी बहन सोती नहीं है, जो छत पर अनाज सुखाने डालते हैं उसको देखते रहते हैं, जो भाई बहने आते हैं कोर्स करने, उसको कोर्स कराती है। आपने इनको कहाँ डाला है, इसको किस कार्य में लगाया है। परंतु उनको कहने पर, घर में धमाल मचाने पर भी मुझे कोई संशय नहीं आया। मुझे यज्ञ के हर कार्य में निश्चय था। तो ज्ञान की हर पॉइंट जब अच्छी तरह समझ लेते हैं और अपने आप में विश्वास आता है कि मुझे यही पढ़ना है, पढ़ाना है, और इस पढ़ाई से ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हमको ये निश्चय था, तो मैं निश्चय से पढ़ती रही और हमारे जो टीचर्स मुझे समझाने आते थे उनको मैं ये सत्य ज्ञान समझाने लगी। दूसरा निश्चय परमात्मा में होना चाहिए। भल परमात्मा निराकार है, परंतु शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने मिलकर बहुत अच्छी रीति समझाया कि वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो देखने में नहीं आता है। ये समझानी इतनी अच्छी तरह बुद्धि में बैठ गई कि हमने उनको ही बुद्धि में बिठा दिया, निश्चय हो गया। और परमात्मा को समझाने में हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें रोज भगवान पढ़ाते हैं, हमें रोज की जो मुरली है स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। ये भगवान उवाच ज्ञान है, हमें कोई संशय नहीं, पूर्ण निश्चय, और दूसरों को भी अच्छी तरह हम समझाने लगे। जब तक परमात्मा में निश्चय नहीं होगा, हमें धारणाएं नहीं होंगी, हमारा पुरुषार्थ तेज नहीं चलेगा। तीसरा, ड्रामा में निश्चय। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा की ये दो पॉइंट, जितना जिगरी निश्चय होगा, हमें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। ड्रामा कल्याणकारी है और एक्यूरेट है। जब भी ड्रामा अनुसार जो परिस्थितियां आती हैं उसमें हमारा कल्याण है, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। जीवन में बहुत परिस्थितियां आई, पर हर परिस्थिति में हम आगे ही बढ़ते गए, पीछे नहीं हुए। अभी जब शरीर का पेपर आया, हिसाब किताब का पेपर आया, उसमें भी हम हिले नहीं। ये भी कल्याणकारी है। हमने बहुत अच्छी सेवा की, परंतु हिसाब किताब के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो हम आगे ही बढ़ते गए। पेपर हिला नहीं सका तो ड्रामा, बाबा इसका रचयिता है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है। हमारे ही पिता ने हम बच्चों का ड्रामा बनाया है, तो वो ड्रामा अच्छा ही होगा ना, कल्याणकारी ही होगा ना। और इसमें हमारा कल्याण ही होगा। जिस समय जो पेपर जहां जिसके द्वारा आना है वो कल्याणकारी है। हमने बहुत सेवा की, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, परंतु ये भी कल्याणकारी है। हर परिस्थिति में सीखने को मिलता है। डायलिसिस जब हुआ और हमारा यहां फिश्यूला डाला, परंतु मैंने कोई एक्सरसाइज की नहीं, ये फेल हो गया। हमने डायलिसिस शुरू कराया, यहां फिश्यूला डाला है, बहुत अच्छा है। यहां अगर फिश्यूला चलता तो हम इतनी सुई नहीं लगा सकते थे। हमने फिश्यूला हुआ तब हमारे यहां के डॉक्टर्स ने हमको समझाया कि आपको 1000 बार ये बॉल दबाना है तो ही आपका ये फिश्यूला डेवलप होगा। तो ये भी कल्याणकारी। उसने बताया ये हमारे ग्लोबल के सचिन भाई डॉक्टर ने, परंतु बहुत अच्छा समझाया कि ये बॉल फट जाना चाहिए, इतनी बार आपको ये दबाना है। तो हमारा ड्रामा में भी पक्का निश्चय चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, और ड्रामा का हर सीन हमें आगे बढ़ाता है। डायलिसिस के कारण मुझे हफ्ते में 3 बार अल्टरनेट कराना पड़ता है। मुझे महसूस हुआ कि मैं सेवा बहुत की है परंतु योग नहीं किया है। ये टाइम मिला है योग करने का, तो मैं रोज वहां सोते सोते बाबा को याद करती हूँ, ज्ञान को रिवाइज करती हूँ। और प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करती हूँ। 4 घंटा लेटे रहना पड़ता है और डायलिसिस चलता है, पर लेटे लेटे मैं अब बहुत अच्छी तरह बाबा को याद करती हूँ। तो ये भी कल्याण ही हुआ ना कि हमें बाबा को याद करना है, ये महसूस हुआ। और चौथा निश्चय होना चाहिए ये ईश्वरीय परिवार में। ईश्वरीय परिवार हमारा साथी है, बाबा हमारा साथी है, कंपेनियन है, और ब्राह्मण परिवार की कंपनी है। तो इस ब्राह्मण परिवार की कंपनी से हमें बहुत फायदा है। उनको हम अच्छी तरह जानते हैं, परखते हैं कि कौन कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, इनमें क्या विशेषता है, उनको क्या बाबा से विशेषता से प्यार है। जब ब्राह्मण परिवार कोरोना काल में हमें नहीं मिला, हम घर में ही बैठे रहे, घर में ही पुरुषार्थ करते थे, या घर के अंदर हमें कितना बताया गया कि आप योग करो, मुरलियां पढ़ो, मनसा सेवा करो। बहुत टाइम हुआ, परंतु हमने अपने आप में देखा, आप सभी ने भी देखा कि टाइम था परंतु एकाग्रता कहाँ थी, बाबा से इतना प्यार कहाँ था। टाइम तो मिला इतना याद करने का, इतनी अव्यक्त वाणियां पढ़ने का, इतनी मनसा सेवा करने का, परंतु हम लोगों ने किया, एकाग्रता हुई, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का संग नहीं था, वैरायटी निश्चय नहीं था, तो ये हमने ब्राह्मणों से पाया। ब्राह्मण भाई बहने रोज मिलते थे क्लास में, किसी को किस बात का निश्चय, किसी को किस बात का उमंग उत्साह, किन्हों में क्या विशेषता सेवा करने की, निश्चय करने की, पढ़ाई करने की, पुरुषार्थ करने की, वैरायटी विशेषताएं वाले भाई बहने हैं। और रोज क्लास के बाद बाहर निकलते हैं तो हरेक अपना अपना बात सुनाते हैं। इससे हम सबको कितना फायदा होता है, उनका निश्चय, उमंग, उत्साह, त्याग, तपस्या, वैराग्य, सेवा, ये सब बातें हमने भाई बहनों के द्वारा सीखी है। तो ये ईश्वरीय परिवार भी जरूरी है। वो कोरोना काल में हमें महसूस हुआ कि जब कोई नहीं आते थे तो हमें उनकी आवश्यकता महसूस हुई। कितनी निश्चय की बातें हमें मिलती थी, हमारे में उमंग उत्साह भरते थे, हमारे में हिम्मत भरते थे। तो कई बातें भाई बहनों के द्वारा सीखी और हमने अपने में धारण की। तो ये चार निश्चय खुद में, परमात्मा में, ड्रामा में और ईश्वरीय परिवार में सब जरूरी थी। जितना निश्चय हमारा 100% होता जाता है, वैरायटी निश्चय बनता जाता है, उतना हमें नशा चढ़ता है। नशा हमें होना चाहिए। आजकल सब भाई बहने कितना सिखाते हैं कि रात को सोने समय ये महावाक्यों को खुद सुनो, और सुनाओ। मैं विजयी रत्न हूं, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूं देवता घराने की। इस प्रकार के कितने निश्चय हमें चढ़ाते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप आता है उसमें भी ये सब आता है, तो हमें कितनी मदद मिलती है, कितना पॉइंट्स मिलते हैं, इससे हमें नशा चढ़ता है। नशा उतरना नहीं चाहिए। बाबा रोज नशा चढ़ाते हैं, तुम हीरो एक्टर हो, तुम विश्व सेवाधारी हो, गॉडली स्टूडेंट हो, तुम सत्य ज्ञानी और डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्मा हो। ये पॉइंट्स जितने हम याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, हमारा नशा चढ़ता जाता है। हमें खुशी होती है, हमें संतुष्टता आती है, प्रसन्नता आती है। जितनी संतुष्टता आएगी, प्रसन्नता आएगी, इतनी खुशी और नशा बढ़ता जाएगा। हरेक का अनुभव है ना ये, जितने व्हाट्सएप हमारे भाई बहनों के हम पढ़ते हैं, ज्ञान की ही इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें हमारा नशा बढ़ता है और हमें खुशी होती है। बाबा भी मुरली में हमें रोज कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। इस प्रकार की कितनी बातें आती है। कल की मुरली में भी बाबा ने सुनाया कि किसी से रूठना नहीं, ब्राह्मणी से भी नहीं रूठना है, आपस में भाई बहनों से भी रूठना नहीं, और रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हम बाबा को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्लास में आना छोड़ देते हैं, ब्राह्मणी से बात करना छोड़ देते हैं, ऐसा रूठना नहीं है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मणी टीचर है, जितना उनसे संबंध अच्छा हम उनसे ले सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। हमें ब्राह्मणी से ही योग करना है, दृष्टि लेनी है, उनसे ज्ञान सुनना है। अगर उनके ही अवगुण हम देखेंगे और उनसे हम दृष्टि भी नहीं ले सकेंगे तो फायदा क्या है। बाबा ने सिखाया तो रोज की मुरली में कोई ना कोई पॉइंट्स आती हैं, टाइटल्स आते हैं, नशा चढ़ाने वाली बात आती है। इसलिए हमें किसी के अवगुण देखने नहीं हैं, किसी से रूठना नहीं है। ये हमें पढ़ाने वाली टीचर से ज्ञान सुनना है, विशेषताएं देखनी है, तो हम उनसे अंत तक पढ़ सकेंगे। हमें खुशी रहेगी तो हम उनके मददगार बनेंगे, सेवा में सहयोगी बनेंगे। तो ये बातें हमेशा याद रखनी है। और निशाना हमारा क्या है? मुरली में सुना ही है कि हम अपना निशाना बिंदु स्वरूप आत्मा पर हमारा ध्यान जाएगा। मुख्य पुरुषार्थ आत्मभिमानी बनना है, हरेक को आत्मा रूप में देखना है। तो मैं बिंदु हूँ, ये जितना स्मृति रहेगी इतना हमारा ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, इमर्ज होगा, और ये साधारण स्वरूप छिप जाएगा। साधारण स्वरूप अभी दिखाई देता है ना, पर जितना हमें ये स्मृति रहेगी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु बाबा की संतान हूँ, और जो कुछ बीत गया, अच्छी भली बुरी बातें जो बीत गई, उनको आप फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो ये तीन बिंदु हमारा निशाना है, इसमें भी हमारा ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप। ये ज्योति स्वरूप जितना हमारा प्रत्यक्ष होगा और ये शारीरिक साधारण स्वरूप जितना छिप जाएगा, उतना ही लोगों को साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं ना कि कोई भी चोर लुटेरे गुंडे आएंगे, जब आपका ज्योति स्वरूप दिखाई देगा तो वो उनको कुछ और नहीं दिखेगा, और वो कोई चोरी चकारी मारा पीट नहीं कर पा सकेंगे। इसलिए अब संगम के अंत पर हम पहुंच गए हैं। अपने आप को चेक करें, महसूस करें कि बाबा ने साकार में 32 वर्ष हमें साकार मुरली चलाई। ये साकार मुरली जरूर सुननी है। कई लोग सिर्फ अव्यक्त वाणी को महत्व देते हैं, साकार मुरली नहीं पढ़ते। पर बाबा ने साकार में जो कुछ सोचा, जो कुछ किया और जो कुछ दूसरों को समझाया, वो ही साकार मुरली में। और अव्यक्त मुरलियां लगभग 49 और 50 वर्ष अपनी संपूर्णता की स्थिति से चलाई। तो हमें संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए क्या क्या करना है वो अव्यक्त वाणी में बताया है, और साकार में सबके साथ हमें कैसे चलना है, ज्ञान का विस्तार कैसे करना है, उसको धारण कैसे करना है, वो बातें सिखाई है। तो ये दोनों मुरली आवश्यक है, रोज मुरली क्लास में जाना जरूरी है। तो आपका साकार द्वारा समझाया हुआ और अव्यक्त बाप दादा के द्वारा संपूर्ण बनने के लिए बताया हुआ हमें समझ में आएगा। बाबा ने तो समझाया, वो पीरियड तो पूरा हो गया, अब तो हमारी कोई दादियां नहीं रही। दादियां जो आदर्श है हमारे सामने, एग्जाम्पल है, उन्होंने आदर्श बनके इतने बड़े यज्ञ को चलाया, संभाला और हमें सिखाया कि हमें यज्ञ का विस्तार कैसे करना है। सिर्फ उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन इन आदि रत्नों ने, दादियों ने, जो आदर्श है हमारे, उन्होंने जो करके दिखाया वो प्रैक्टिकल हमें भी करना है। अगर हम खुद करके नहीं दिखाएंगे इतना सेवा का विस्तार, इतने सेंटरों का विस्तार करके दिखाए, बाबा जब थे तो सिर्फ 136 या 150 सेंटर्स थे, पर दादी दीदी ने भारत में 8000 सेवा केंद्र करके दिखाए। और दादी जानकी जी ने विदेश में सेवा करके दिखाई, जिसकी भाषा भी नहीं जानती थी, इतनी पढ़ी भी नहीं, परंतु दादी जानकी ने 140 देशों में इतने सेंटर्स, 500 सेंटर्स खुल के दिखाए और वहां के ही हैंड्स द्वारा सेवा करके दिखाई। तो ये भी जानकी दादी की भी कमाल है, विदेश में 140 देशों में 500 सेवा केंद्र और वहां के ही हैंड्स द्वारा चलाए। और दादी गुलजार जी ने अपने पार्ट के द्वारा देश विदेश के सभी भाई बहनों के पालना कराई, कितना वंडरफुल पार्ट प्ले किया। वो खुद रथ बने, अव्यक्त बाप दादा 50 वर्ष उसमें बाबा प्रवेश हुए और वो पार्ट प्ले किया और सब ब्राह्मण वत्सों की, देश विदेश के सभी ब्राह्मण वत्सों की पालना की। ये विदेशियों ने बताया, अगर दादी गुलजार का पार्ट नहीं होता तो हम, बाबा ने और दादी गुलजार नॉर्मल जब होती है, दोनों के स्वरूप में, रूप में क्या अंतर है वो हम लोगों को बता नहीं सकेंगे। दादी गुलजार जी का नॉर्मल स्वरूप, दादी गुलजार जी के रूप में वो कैसा था और दादी बाबा के प्रवेश होने के बाद दादी में कितनी लाइट माइट आती थी, उन्होंने एक बुक बनाई है, उसमें ये दोनों चित्र बताए हैं। आदि देव ब्रह्मा बाबा ऐसी एक बुक है, उसमें ये दो फोटोज लेके उन्होंने सिद्ध करके बताया। तो ये भी विदेशियों ने माना, गुलजार दादी ने ही सिद्ध करके दिखाया। और चौथी हेड जो बनी वो रतन मोहिनी दादी, लास्ट में उसने शरीर छोड़ा। और उन्होंने बताया हमें पर्सनल, हम उनसे मिलते थे तो उन्होंने बताया कि बाबा कैसे तप कराते थे और हम बहनों को कहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस इस एक ही संकल्प में हम घंटों मस्त होके बैठते थे। ऐसी तपस्या कराई जो हम देही अभिमानी बन गए और तपस्या में मग्न हो जाते थे। तो दादी ने तप के बल से कोई भी आदि रत्नों का उनके जमाने में संगठन नहीं था, संग नहीं था, पर तप के बल से और ज्ञान का मनन मंथन करने की जो दादी में आदत थी, उस ज्ञान के मनन मंथन चिंतन के बल से उन्होंने कारोबार कर किया। तो ये हमारे सभी बड़े हैं, आदि रत्न हैं, उन्होंने हमें सीखना है और अपने में धारणा करनी है। तो ये है आदि रत्नों का बल, बाबा मम्मा का बल। बाबा मम्मा का भी कितनी पालना हमें मिली, उन्होंने का निश्चय देखा, नशा देखा, और कैसे वो निशाने पर पहुंच गए, अपनी कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण स्थिति पर पहुंच गए। यही रास्ता हमें सीखना है, फॉलो करना है। दादियों का पता है ना सबको, हाँ, किन किन लोगों ने दादियों को देखा है? बहुतों ने देखा है। ये सिरी फोर्ट के और मोरबी के भाई बहने, हाँ, बहुत अच्छे। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और बहुत निशाने पर एकाग्र होकर अपनी लाइट माइट अपने में भरेंगे। और अब तो हम सबको ही बाबा का कार्य संभालना है। पुराने जो भी भाई बहने हैं उनका फर्ज है लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सेवा में मददगार बनना।